जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। जब शास्त्रों का विचार मिलकर प्राप्त होता है तब स्वरूप की प्राप्ति होती है, द्वैत भ्रम मिट जाता है और सर्वत्र आत्मा ही झलकता है। और जब विचार द्वारा आत्म तत्व का निश्चय हुआ कि सर्वत्र सब कुछ आत्मा ही है, उससे कुछ भिन्न नहीं, तब अविद्या जाती रहती है। हे मुनीश्वर, आत्मा की प्राप्ति में गुरु और शास्त्र प्रत्यक्ष कारण नहीं, क्योंकि जिनके क्षय होने से वस्तु को पाइए, उनके विद्यमान होते वह वस्तु कैसे मिल सकती है। देह इंद्रियों सहित गुरु होता है और ब्रह्म सब इंद्रियों से अतीत है, इनसे कैसे उसे पाइए। ज्ञान अकारण है परंतु उसके कारण भी हैं, क्योंकि गुरु और शास्त्र के क्रम से ज्ञान की सिद्धि होती है और गुरु और शास्त्र के बिना बोध की सिद्धि नहीं होती। आत्मा निर्देश और अदृश्य होकर भी गुरु और शास्त्र से मिलता है और गुरु और शास्त्र से भी नहीं मिलता। आप ही से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जैसे अंधकार में पदार्थ हो और दीपक के प्रकाश से दिखे तो दीपक से उसे नहीं पाया, अपने आप से पाया है, वैसे ही गुरु और शास्त्र भी हैं। यदि दीपक हो और नेत्र न हो तब कैसे वस्तु पाइए, और नेत्र हो और दीपक न हो तो भी नहीं पाया जाता। जब दोनों हो तब पदार्थ पाया जाता है, वैसे ही गुरु और शास्त्र भी हों और अपना पुरुषार्थ और तीक्ष्ण बुद्धि हो तब आत्म तत्व मिलता है, अन्यथा नहीं पाया जाता। जब गुरु शास्त्र और शिष्य की शुद्ध बुद्धि तीनों इकट्ठे मिलते हैं तब संसार के सुख दुख दूर होते हैं और आत्म पद की प्राप्ति होती है।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 8वां सर्ग। राम जी ने पूछा, हे भगवन, जब महाप्रलय होता है और सब पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, उसके पीछे जो रहता है उसे शून्य कहिए या प्रकाश कहिए, क्योंकि तम तो है नहीं, चेतन है अथवा जीव है, मन है व बुद्धि है, सत असत किंचन अकिंचन, इनमें कोई तो होवेगा। आप कैसे कहते हैं कि वाणी की गम नहीं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह तुमने बड़ा प्रश्न किया है। इस भ्रम को मैं बिना यत्न नाश करूंगा। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे संशय का नाश होगा। हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब संपूर्ण दृश्य का अभाव हो जाता है, पीछे जो शेष रहता है सो शून्य नहीं, क्योंकि दृश्य भास उसमें सदा रहता है और वास्तव में कुछ हुआ नहीं। जैसे थंब में शिल्पी पुतलियां कल्पता है कि इतनी पुतलियां इस थंब से निकलेगी, सो उस थंब में ही शिल्पी कल्पता है। जो थंब ना हो तो शिल्पी पुतलियां किसमें कल्पता। वैसे ही आत्म रूपी थंबे में मन रूपी शिल्पी जगत रूपी पुतलियां कल्पता है। जो आत्मा ना हो तो पुतलियां किसमें कल्पे। जैसे थंबे में पुतलियां थंबा रूप है, वैसे ही सब जगत ब्रह्म रूप है। ब्रह्मा से इतर जगत का होना नहीं। जैसे पुतलियों का सद्भाव और असद्भाव थंब में है, क्योंकि अधिष्ठान रूप थंबा है, थंबे बिना पुतलियां नहीं होती, वैसे ही जगत आत्मा के बिना नहीं होता। हे राम जी, सद्भाव हो जाता है वह सत से होता है, असत में नहीं, और असत भाव सिद्ध होता है वह सत में ही होता है, असत से नहीं होता। इससे सत शून्य नहीं, जो शून्य होता तो किसमें भासता। जैसे सोम जल में तरंग का सद्भाव और असद्भाव भी होता है, असद्भाव इस कारण होता है कि तरंग भिन्न कुछ नहीं, और सद्भाव इस कारण से होता कि जल ही में तरंग होता है। वैसे ही जगत का सद्भाव असद्भाव आत्मा में होता है, शून्य में नहीं। जैसे सोम जल में कहने मात्र को तरंग है, नहीं तो जल ही है, वैसे ही जगत कहने मात्र को है, हुआ कुछ नहीं, एक सत्ता ही है। और शून्य और अशून्य भी नहीं, क्योंकि शून्य और अशून्य ये दोनों शब्द उसमें कल्पित है। शून्य उसको कहते हैं जो सद्भाव से रहित अभाव रूप हो, और अशून्य उसको कहते हैं जो विद्यमान हो, पर आत्मसत्ता इन दोनों से रहित है। अशून्य भी शून्य का प्रतियोगी है, जो शून्य नहीं तो अशून्य कहां से हो। ये दोनों ही अभाव मात्र है। हे राम जी, यह सूर्य तारा दीपक आदि भौतिक प्रकाश भी वहां नहीं, क्योंकि प्रकाश अंधकार का विरोधी है। जो यह प्रकाश होता तो अंधकार सिद्ध ना होता, इससे वहां प्रकाश भी नहीं है और तम भी नहीं है, क्योंकि सूर्य आदि जिससे प्रकाशते हैं वह तम कैसे हो। आत्मा के प्रकाश बिना सूर्य आदि भी तम रूप है, इससे वह शून्य है ना अशून्य है, ना प्रकाश है ना तम है, केवल आत्म तत्व मात्र है। जैसे थंब में पुतलियां कुछ है नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ हुआ नहीं। जैसे बेली और बेली की मज्जा में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। और जैसे जल और तरंग में, मृतिका और घट में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, नाम मात्र भेद है। हे राम जी, जल और मृतिका का जो दृष्टांत दिया है, ऐसा भी आत्मा में नहीं। जैसे जल में तरंग होता है और मृतिका में घट होता है, सो भी परिणाम रूप होता है, आत्मा में जगत भान नहीं है। और जो मानसिक है तो आकाश रूप है, इससे जगत कुछ भिन्न नहीं है। रूप अवलोकन मनस्कार जो कुछ भासता है वह सब आकाश रूप है। आत्मसत्ता ही चित्त के फुरने से जगत रूप हो भासती है, जगत कुछ दूसरी वस्तु नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। हे राम जी, थंबे में जो शिल्पाकार पुतलियां कल्पता है, सो भी नहीं होती, और यहां कल्पने वाला भी बीच की पुतली है, वह भी होने बिना भासती है। हे राम जी, जिससे यह जगत भासता है उसको शून्य कैसे कहिए, और जो कहिए कि चेतन है तो भी नहीं, क्योंकि चेतन भी तब होता है जब चित्त कला फूरती है। जहां फूरना ना हो वहां चेतनता कैसे रहे। जैसे जब कोई मिर्च को खाता है तब उसकी तिखाई भासती है, खाए बिना नहीं भासती, वैसे ही चैतन्य जानना भी स्पंद कला में होता है, आत्मा में जानना भी नहीं होता। चैतन्यता से रहित चिन्ह मात्र अक्षय सुषुप्ति रूप है, उसको जो तूर्य कहता है वह गय ज्ञानवान से गम्य है। हे राम जी, जो पुरुष उसमें स्थित हुआ है उसको संसार रूपी सर्प नहीं डस सकता, वह अचैत्य चिन्मात्र होता है। और जिसको आत्मा में स्थिति नहीं होती उसको दृश्य रूपी सर्प डसता है। आत्मसत्ता में तो कुछ द्वैत नहीं हुआ, आत्मसत्ता तो आकाश से भी स्वच्छ है। इनका दृष्टा दर्शन दृश्य स्वतः अनुभव सत्ता आत्मा का रूप है, और वह अभ्यास करने से प्राप्त होती है। हे राम जी, उसमें द्वैत कल्पना कुछ नहीं है, वह अद्वैत मात्र है। वह ना दृष्टा है, ना जीव है, ना कोई विकार और ना स्थूल ना सूक्ष्म है, एक शुद्ध अद्वैत रूप अपने आप में स्थित है। जो यह चैत्य का फुरना ही आदि में नहीं हुआ तो चेतन कला रूप जीव कैसे हो, और जो जीव ही नहीं तो बुद्धि कैसे हो, जो बुद्धि ही नहीं तो मन और इंद्रियां कैसे हो, जो इंद्रियां नहीं तो देह कैसे हो, और जो देह ना हो तो जगत कैसे हो। हे राम जी, आत्मसत्ता में सब कल्पना मिट जाती है, उसमें कुछ कहना नहीं बनता। वह तो पूर्ण अपूर्ण सत असत से न्यारा है, भाव और अभाव का कभी उसमें कोई विकार नहीं। आदि मध्य अंत की कल्पना भी कोई नहीं। वह तो अजर अमर आनंद अनंत चित्त स्वरूप अचैत्य चिन्ह मात्र और अवाक्य पद है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, आकाश से भी अधिक शून्य और स्थूल से भी स्थूल, एक अद्वैत और अनंत चिद रूप है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवन, यह अचिंत्य चिन्ह मात्र और परमार्थ सत्ता जो आपने कही, उसका रूप बोध के निमित्त मुझसे फिर कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब सब जगत नष्ट हो जाता है, पर ब्रह्म सत्ता शेष रहती है, उसका रूप मैं कहता हूं। मन रूपी ब्रह्म है। मन की वृत्ति जो प्रवृत्त होती है वह एक प्रमाण, दूसरी विपर्यक, तीसरी विकल्प, चौथी अभाव और पांचवी स्मरण है। प्रमाण वृत्ति तीन प्रकार की है, एक प्रत्यक्ष, दूसरी अनुमान। जैसे धुआं से अग्नि जानना और तीसरी शब्द रूप, ये तीनों प्रमाण वृत्ति आप्त कामिका है। द्वितीय विपर्यक वृत्ति है, विपरीत भाव से तृतीय विकल्प वृत्ति है, चेतन ईश्वर रूप है और साक्षी पुरुष रूप है। अर्थात जैसे सीप पड़ी हो और उसमें संशय वृत्ति चांदी की या सीपी की भासे तो उसका नाम विकल्प है। चतुर्थ निद्रा अभाव वृत्ति है और पंचम स्मरण वृत्ति है। यही पांचों वृत्तियां हैं और इनका अभिमान मन है। जब तीनों शरीरों का अभिमानी अहंकार नाश हो तब पीछे जो रहता है सो निश्चल सत्ता अनंत आत्मा है। मैं सत नहीं कहता हूं। हे राम जी, जागृत के अभाव होने पर जब तक सुषुप्ति नहीं आती वह रूप परमात्मा का है। अंगुष्ठ को शीत उष्ण का स्पर्श होता है, उसको अनुभव करने वाली परमात्म सत्ता है, जिसमें दृष्टा, दर्शन और दृश्य उपजता है और फिर लीन होता है, वह परमात्मा का रूप है। उस सत्ता में चेतन भी नहीं है, हे राम जी, जिसमें चेतन अर्थार्थ जीव और जड़ अर्थार्थ देह आदिक दोनों नहीं है, वह अचैत्य चिन्ह मात्र परमात्म रूप है। जब सब व्यवहार होते हैं उनके अनंतर आकाश रूप है, उनके अंतर आकाश रूप है, कोई शोभ नहीं, ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है। वह शून्य है परंतु शून्यता से रहित है। हे राम जी, जिसमें दृष्टा, दर्शन और दृश्य तीनों प्रतिबिंबित है और आकाश रूप है, ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है। जो स्थावर में स्थावर भाव और चेतन में चेतन भाव से व्याप रहा है और मन, बुद्धि, इंद्रिया जिसको नहीं पा सकती, ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है। हे राम जी, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र का जहां अभाव हो जाता है, उसके पीछे जो शेष रहता है और जिसमें कोई विकल्प नहीं, ऐसी अचेत चिन्ह मात्र सत्ता परमात्मा का रूप है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मसत्ता नित्य, शुद्ध, अजर, अमर और सदा अपने आप में स्थित है। उसमें जिस प्रकार सृष्टि उदय हुई है वह सुनिए। उसके जानने से जगत कल्पना मिट जावेगी। हे राम जी, भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग, स्थूल, सूक्ष्म, जन्म, मरण आदि पदार्थों से जीव छेदा जाता है, उससे तुम मुक्त होंगे। जैसे चूहे सुमेरु पर्वत को चूर्ण नहीं कर सकते, वैसे ही तुमको संसार के भाव, अभाव, पदार्थ चूर्ण ना कर सकेंगे। हे राम जी, आदि शुद्ध देव अचेत चिन्ह मात्र है, उनमें चैत्य भाव सदा रहता है, क्योंकि वह चैतन्य रूप है। जैसे वायु में स्पंद शक्ति सदा रहती है, वैसे ही चिन्ह मात्र में चैत्य का फूरना रहकर अहमस्मि भाव को प्राप्त हुआ है, इस कारण उसका नाम चैतन्य है। हे राम जी, जब तक चैतन्य संबित अपने स्वरूप के ठोर नहीं आता, तब तक इसका नाम जीव है और संकल्प का नाम बीज चित्त संबित है। उसी से सर्वभूत जाति उत्पन्न हुई, इससे सबका बीज चित्त संबित है। जब जीव संबित चैत्य को चेतता है, तब प्रथम शून्य होकर उसमें शब्द गुण होता है। उस आदि शब्द तन मात्रा से पद, वाक्य और प्रमाण सहित वेद उत्पन्न हुए। जितना कुछ जगत में शब्द है उसका बीज तन मात्रा है, जिससे वायु स्पर्श होता है, फिर रूप तन मात्रा हुई, उससे सूर्य अग्नि आदि प्रकाश हुए, फिर रस तन मात्रा हुई, जिससे जल हुआ, और सब जलों का बीज वही है, फिर गंध तन मात्रा हुई, जिससे संपूर्ण पृथ्वी हुई, और सब पृथ्वी का बीज वही है। हे राम जी, इसी प्रकार पांचों भूत हुए हैं, फिर पृथ्वी, अब तेज, वायु और आकाश से जगत हुआ है। सो भूत पंचीकृत और अपंचीकृत है। यह भूत शुद्ध चिदाकाश रूप नहीं, क्योंकि संकल्प और मेल युक्त हुए हैं। इस प्रकार चिद अणु में सृष्टि भासी है। जैसे बट बीज में से बट का विस्तार होता है, वैसे ही चिद अणु में सृष्टि है। कहीं क्षण में युग और कहीं युग में क्षण भासता है। चिद अणु में अनंत सृष्टि फुरती है। जब चित्त संबित चैतन्य मुख होता है, तब अनेक सृष्टि होकर भासती है। और जब चित्त संबित आत्मा की ओर आता है, तब आत्मा के साक्षात्कार होने से सब सृष्टि पिंडाकार होती है, अर्थात सब आत्मा रूप होती है। इससे इस जगत के बीज सूक्ष्म भूत है और इनका बीज चिद अणु है। हे राम जी, जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है। इससे सब जगत चिदाकाश रूप है। संकल्प से यह जगत आडंबर होता है और संकल्प के मिटे सब चिदाकाश होता है। जैसे संकल्प आकाश रूप है, वैसे ही जगत भी आकाश रूप है। आत्मा अनुभव आकाश रूप है, जिससे क्षण में अनेक रूप होते हैं। जैसे संकल्प नगर और स्वप्नपुर होता है, वैसे ही यह जगत है। हे राम जी, इस जगत का मूल पंचभूत है, जिसका बीज संबित और स्वरूप चिदाकाश है। इसी से सब जगत चिदाकाश है, द्वैत और कुछ नहीं।
हरि ओम। हरि ॐ सहनावतु सहनाभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।